कंटिन्यू करेंगे आगे से तर्जमे को आयत नंबर 79 से आगे देखते हैं. फवैलु लिल्लज़ीन यक्तुबून अल किताब बिअयदीहिम, बस तबाही है और हलाकत है इन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब को लिखते हैं. सुम्म यकूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाही, फिर कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, यानी अपने मन चाहे अहकामात अपनी मनपसंद चीजों को अल्लाह की तरफ से आई हुई करार देते हैं. करते क्यों है ऐसा? ताकि इसके मुआवजे में थोड़ा सा फायदा हासिल करें. इनके हाथों का ये लिखा भी इनके लिए तबाही का सामान है और इनकी ये कमाई भी इनके लिए मूजिबे हलाकत है. वो कहते हैं कि दोजख की आग हमें न छुएगी, मगर ये कि चंद रोज की सजा मिल जाए तो मिल जाए. देखिए खुशफहमियाँ, जब किताब बंद होती है तो उसकी जगह पे खुशफहमियाँ. कल उनका ख्याल था कि जहन्नुम की आग हमें नहीं छुएगी, और आज के मुसलमानों का हाल क्या है? अगर हम इनके ऊपर गौर करें तो अकीदे में शिर्क है, अमल में कुफर है और दिल में बुग़्ज़ है. और सोचते क्या है, दावा क्या है? लन तमस्सन नार इल्ला अय्यामन मादूदा. याद रखिए, जब ईमान दिल में आता है तो वो अकेला नहीं आता, ईमान के साथ अमल सवाले साथ ही साथ आएंगे. तो लिहाजा आज अगर हम में से किसी का ये ख्याल है कि खुद को मुसलमान कहने से अगर हम जन्नत में चले जाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक खुशफहमी है, इससे ज्यादा कोई और बात भी नहीं. इनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसकी खिलाफ वर्जी वो कर नहीं सकता? यानी कि अल्लाह ने तुमसे ये प्रॉमिस किया है कि तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें जन्नत जरूर दूंगा, या बात यह है कि तुम अल्लाह के जिम्मे डालकर ऐसी बातें कह देते हो जिसके मुतल्लिक तुम्हें इल्म भी नहीं कि इसने इनका जिम्मा लिया है? आखिर तुम्हें दोजख की आग क्यों ना छुएगी जो भी बदी कमाएगा और अपनी खताकारी के चक्कर में पड़ेगा. यानी आप एक गुनाह कीजिए, वो दूसरे गुनाहों को खुद ही बुला लेगा. फौलाएक असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून, बस यही लोग हैं दोजख के साथी और वो उसमें हमेशा रहेगा. इसके बरक्स जन्नत में जाना कैसे? ना खुशफहमियों से, ना नाम से, ना किसी बात से, बल्कि वल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति उलाइका असहाबुल जन्ना, वो लोग जो ईमान लाकर अमल सालेह करते रहेंगे वो जन्नत के साथी हैं. हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे. याद करो, इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिसकीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और जकात देना. मगर थोड़े से लोगों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो. ये हैं वो जिनको 10 कमेंडमेंट्स कहते हैं. आगे भी आएंगे, लेकिन यहाँ आप देखिए कि हर दीन में बेसिक्स हमेशा एक ही जैसे रहे. हर नबी की तालीमात में ये बातें रही जो आयत 83 में हमारे सामने हैं. कुछ कानूनी अहकामात होते हैं, कुछ अखलाकी कवानीन होते हैं, कुछ इसी तरह शरई अहकामात होते हैं. और आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने हर दौर में जिन बातों के करने का हुक्म दिया और जिन चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया, ये सब के सब वो हैं जो हमारी फितरत की भी पुकार है. तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के कवानीन फितरत से मैच करते हैं, ना कि उससे के ऑपोजिट हैं. लेकिन लोगों का हाल क्या होता है कि ऐसी बातों को सुनकर अहदों से फिर जाते हैं. फिर जरा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून न बहाना और न एक दूसरे को घर से बेघर करना. तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो. मगर आज वही तुम हो, अपने भाई बंदों को कत्ल करते हो, अपनी बिरादरी के कुछ लोगों को उनके घरों से निकाल देते हो, जुल्म ज्यादती के साथ इनके खिलाफ जत्थेबंदियां करते हो, और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो इनकी रहाई में फिदिये का लेन देन करते हो. हालांकि इन्हें इनको इनके घरों से निकालना ही सिरे पर से तुम पर हराम था. तो असल बात क्या है? ये है इस आयत का नुक्ता जिस पे मैं और आप गौर करेंगे. हाईलाइट कीजिएगा, अफतूमिनून बिबादिल किताबी वतकफुरून बिबाद. बस क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और एक दूसरे हिस्से के साथ कुफर करते हो? फिर तुम में से जो कोई ऐसा करें, इनकी सजा इसके सिवा और क्या है? क्या है सजा, उसको तो बाद में देखते हैं. आप देखिए कि अल्लाह ताला को पूरी इताअत चाहिए, कल के मुसलमान थे या आज के. जब मुसलमानों का रवैया ये हो जाए कि अपनी पसंद की चीज़ों को दीन कहने लगे और दीन में जो चीज़ें पसंद ना हो उसको इस तरह से निकाल कर फेंक दे कोया कि ये दीन नहीं है, तो अल्लाह ताला आधे अमल से पूरी जन्नत कैसे देगा? अगर आपके पास $10 का भी नोट हो लेकिन वो दो टुकड़ों में बटा हो तो कोई आपको उसमें से पाँच पाँच करके कुछ चीज़ देगा? आधे नोट से जब दुनिया में कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप बताइए कि जन्नत आधे अमलों से कैसे मिलेगी? आज के मुसलमानों का अगला इशू, जितने भी आपने अभी तक नोट किए उसमें ऐड कर लीजिए, पूरे दीन पे अमल करने से डरते हैं. क्योंकि लोगों ने ये ख्याल दे दिया कि पूरे दीन पे अमल करने वाला फंडामेंटलिस्ट हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। दुनिया का कोई काम पूरे दिल से करे तो उसको परफेक्शनिस्ट कहेंगे, और जब दीन का काम कोई पूरे दिल से करे तो उसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, फंडामेंटलिस्टिक नहीं होंगे तो कायम कैसे रहेंगे? घर अपनी बुनियादों पे कायम है, ये हॉल अपनी बुनियादों पे कायम है। तो लिहाजा आधे दीन की बात करके लोग अल्लाह के अजाबों को बुला लेते हैं, और अक्सर लोगों से आप बात करें कहते हैं चलो शुक्र करो ना, कुछ को तो मान रहे ना, चलो भाई हम दूसरों से तो अच्छे हैं ना, देखें ना फिर क्या है। तो याद रखिए ये सब सेल्फ मेड किस्म के एडिशन है दीन के। अल्लाह ताला चाहता है कि पूरा मानो, टेक इट और लीव इट। अल्लाह कभी भी अधूरी इताअत पसंद नहीं करता। अल्लाह की किताब में जब कानून पूरा है, पूरे को छोड़कर आधा मानेंगे तो उस दीन को फिर लोग यही कहेंगे ना कि ये बहुत सख्त दीन है। आज हम मुसलमानों ने लोगों को मौका दिया कि वो अल्लाह को बातें करें, सच्ची जो बात है। जब हम इस्लाम की आधी चीजें ले लेते हैं आधी नहीं लेते, तो दूसरी तरफ क्या होता है कि दूसरे लोग सोचते हैं कि इस्लाम है ही इतना अजीब दीन। आप इमेजिन कीजिए कि अपने जहन में रखिए कि आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है, जब उसके सब पुर्जे उसकी जगह पे लगे हुए हैं तो वो काम करेगी? एक तार उसका मिस होगा तो क्या वो काम करेगी? गाड़ी इतनी बड़ी है और गाड़ी का एक तार इधर से उधर हो जाए तो वो नहीं चलती। उतारना तो दूर की बात है, इधर की बजाय उधर लगा दे तो नहीं चलती। और अगर आप कहें कि अच्छा जी गाड़ी खराब हो गई, इसका ये पुर्जा लाओ वॉशिंग मशीन का पुर्जा इसमें लगा देती हूँ, फिर आप कहते हैं अच्छा फिर ये चीज़ खराब हुई लाए वो जो घर में ब्लेंडर रखा है उसकी कोई तार लगाऊं, क्या वो गाड़ी चलेगी? फिर आप रोएंगे कि ये गाड़ी बनाने वाले ने कैसी गाड़ी बनाई। क्या था मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया कि हमने इस्लाम के अंदर कहीं निफाक के और कहीं दूसरे मजाहब के जोड़ नहीं लगाए हुए, और फिर रोते हैं कि इस्लाम की गाड़ी नहीं चलती? ऐसा इंसान इस्लाम को बदनाम करने का जरिया बनता है जो अपने ही इस्लाम के अंदर दूसरी चीजों को लेकर आता है। आज दुनिया में कोई किसी के कानून में एक लाइन बदल दे, आप अपनी मर्जी से अमेरिकन लॉ में कहीं एक लाइन बदल दें, आपको जेल में ले जाएंगे। तो जो अल्लाह के दीन को अपनी मर्जी से करें, क्या वो क्रिमिनल्स नहीं है? दुनिया में ऐसा करे कोई तो उसको क्रिमिनल कहते हैं, और दीन में कोई करे तो कहते हैं वी आर लिबरल मुस्लिम। याद रखिए लिबरल नहीं है, दीन इस्लाम सबसे लिबरल है जो हर एक को उसका हक देता है। अब आइए देखिए कि जब मुसलमान ऐसा करते हैं तो उसकी सजा क्या है? ये है वो सवाल जो सब मुसलमानों के जहनों में आज के दौर में, कि आखिर हम क्यों पिटते हैं, आखिर हमारे बच्चे क्यों मरते हैं, आखिर क्यों मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम है? तो अल्लाह कहते हैं जब कोई कौम पिक एंड चूज करे, जब अपनी मर्जी का दीन ले और अपनी पसंद से छोड़ दे, तो फमा जजाओ में यफल जालिक मिनकुम इल्ला खिज्यन फिल हयात दुनिया, फिर बताओ इसके सिवा और क्या सजा हो कि अल्लाह उनको दुनिया में रुसवा कर दे। व यौमल क़ियामत युरद्दून इला शद्दिल अज़ाब, और आखरत के दिन तो और ज्यादा शदीद अज़ाब में होंगे। आज के मुसलमान के हालात से आप मुसलमान की आखरत को भी गेस कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में हम पिटें और आखरत में हम जन्नतों में चले जाएं? आज दुनिया वालों के तो हम पसंदीदा नहीं रहे, अल्लाह हमें कैसे पसंद करेगा? जो चीज़ें अल्लाह को पसंद थी आज हमने उसको निकाल के फेंक दिया। तो याद रखिए कि आखरत के अजाब तो बाद की बात है, दुनिया की सजाएं बहुत हैं, क्योंकि अल्लाह इन हरकतों से बेखबर नहीं जो तुम कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखरत बेचकर दुनिया की जिंदगी खरीद ली। क्या होगा? फला युखफ्फ अनहुम अलअज़ाब वला हुम युनसरून, बस उनसे अजाब को हल्का न किया जाए और न उनकी मदद की जाएगी। हाईलाइट कीजिए इस आयत को भी, उलाइक अल्लज़ीन अश्तरबुल हयात अद्दुनिया बिल आखिरा। इसको थोड़ा सा समझेंगे एक मिसाल से। आप देखिए कि बाज़ दफ़ा हालात जब तंग होते हैं, लोगों के पास माल कम होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, घर की चीज़ें बेचने लगते हैं। और चीज़ें जब बेची जाएं तो सबसे पहले वो चीज़ें बेची जाती हैं जो बेकार हों, कम अहम हों, और बहुत अहम और हर वक्त की इस्तेमाल की चीज़ों और कीमती चीज़ों को पीछे डाला जाता है। ये तो दुनिया की बात है, लेकिन जब दीन के मामले में लोग दीन बेच लेते हैं, ईमान बेच लेते हैं, अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को बेचते हैं, तो आप बताइए कि नफ़े का सौदा? वो शख्स कितना अहमक है जो ये सोचता है कि मेरी आखिरत जैसी भी हो मुझे दुनिया के फायदे चाहिए। आज जिन चीज़ों को लोग कॉम्प्रोमाइजिंग होना, असिमिलेटेड होना और बहुत ज्यादा लिबरल होना कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो खसारे में है। फला युखफ्फन हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून, बस इनकी सजा में कोई कमी ना होगी ना इनको कोई मदद पहुंच सकेगी। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, इसके बाद फिर कई पैगंबर भेजे, आखिरकार ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां देकर भेजा और रूह पाक से उनकी मदद की। रूह पाक से यहाँ मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। क्यों? क्योंकि वो इंसानियत को रूह देने वाली वही लेकर आते थे। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज लेकर आ गया तुम्हारे पास, तो तुमने इसके मुकाबले में सरकशी ही की? किसी को झुटलाया और किसी को कत्ल कर डाला। इस आयत पे सिर्फ 3 सेकंड गौर कीजिए। ये भी उम्मते मुस्लिमा का आज का एक इशू है। दीन की वो चीजें जो ख्वाहिश के खिलाफ होती हैं उसको निकाल देते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे दिल महफूज हैं, यानी हम पे कोई असर नहीं होगा। इन बातों को 10 दफा भी सुनेंगे ना, हमने कोई नहीं अमल करना। नहीं, असल बात यह है कि इनके कुफर की वजह से इन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से इनके पास आई है, इसके साथ इनका क्या बर्ताव है? बावजूद इसके कि वो इस किताब की तस्दीक करती है जो इनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद इसके कि इसकी आमद से पहले वो खुद कुफार के मुकाबले में फतह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। ये कौन लोग हैं? पहले दुआएं करते हैं, कोई मौका आए तो हम नेकी करें, कोई मौका आए तो हम सीखें, कोई कुरान पढ़ाए तो हम पढ़ें। जब वो मौका मिल जाए, जब पढ़ने का मौका आ जाए सीखने का, तो फिर मजबूरियां और परेशानियां और आजमाइशें और इतनी छोटी छोटी चीजें रास्ते की रुकावट बनती हैं कि लोग फिर उस चीज से अपने आप को दूर करते हैं। आप पता नहीं कितनी मुश्किलों पर काबू पा के यहां आई हैं। मेरे ख्याल में आपसे बहुत ज्यादा और सिस्टर्स भी हैं जो ख्वाहिशें भी रखती हैं, आना भी चाहती हैं, तमन्नाएं भी करती हैं, लेकिन कोई छोटी सी मजबूरी, बस दफा सिर्फ घर में एक मेंटेनेंस मैन का आना कुरान से दूरी, एक पारे से महरूमी का जरिया, तो आज तो आप यहां मौजूद हैं। अगर कल आपके आने से पहले आपको लगे कि घर में कोई मजबूरी है, चलो आज नहीं जाती, आज नहीं सुनती, बाद में सुन लूंगी, तो फौरन इस आयत को याद कर लीजिएगा। बाद वाले तो बाद वाले ही होते हैं, घर वाले तो घर वाले ही होते हैं। पास बैठकर और उस महफिल का हिस्सा बनना और वहां फरिश्तों की दुआएं लेना, ये तो वही बात है, लेकिन ये लोगों की आदत होती है कि जब नेमत पास हो तो कहते हैं ये अब और पास क्यों नहीं, हम 1 घंटा दूर से आए, आधे घंटा दूर से आए। कल हम कहीं थे तो सिस्टर से ऐसी बातें हो रही थी, तो मैंने हंस के कहा कि ये बस बता दें कि अल्लाह ताला आपके लिए मुझे कहाँ से लेकर आया, मैं आई नहीं, इसलिए मैंने जुमला बदल सोच के बोला। यानी कितना दूर लगता है हमें, हालांकि आप देखिए कि जो आए हैं मेरे हाल उनमें से किसी को भी दूर नहीं लगा होगा। ऐसे ही है ना, मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा, लेकिन अमूमन ऐसे हालात होते हैं कि लोग फिर उस चीज को पीछे करते हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, ये कुरान की नेमत हमारे पास है, हम इसे बेहतरीन तरीके से फायदा उठाएं। कोई उजर कोई और जेन्युइन रीजन होती है, उसका कोई ना कोई हल जरूर होता है। बस अब हमें साइड प्लान बनाने नहीं आते, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें हिकमत अता फरमाए। मगर जब वो चीज आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह की लानत इन मुनकरीन पर, कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ने नाजिल की है इसको कबूल करने से सिर्फ इस जिद की बिना पर इनकार कर रहे हैं। यानी अल्लाह ने अपने फजल यानी वही और रिसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाह नवाज दिया, एतराज है कि तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल आ गया और तुम सिर्फ इस बात पर बहस कर रहे हो कि वो किस कौम से आया, किस नस्ल से आया, तो ये तुम्हारे अपने नसीब की बात है। बस अब ये गजब बालाए गजब के मुस्तहिक हो गए और ऐसे काफिरों के लिए सख्त जिल्लत अमेज सजा मुकर्रर है। अल्लाह ताला कौमों को सजा देता है जब वो वक्त के नबी का इनकार कर दें, यही बनी इसराइलियों के साथ हुआ था। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब इनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है इस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ इस चीज पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्ल इसराइल में उतरी है, इस दायरे के बाहर जो कुछ आए इसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक है और इस तालीम की तस्दीक और ताईद कर रहा है जो इनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा, इनसे कहो अगर तुम इस तालीम पर ही ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे पास आई थी, तो इससे पहले अल्लाह के इन पैगंबरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते थे? तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियों के साथ आए थे, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि इसके पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना लिया। देखिए, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना उनको बताया जा रहा है कि तुम अपने नबी को कहाँ मानते थे। तो चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो चाहे हजरत मूसा, जिसको नहीं मानना उसको नहीं मानना, और जिसको नहीं मानना, जिसको नहीं सीखना, जिसको फायदा नहीं उठाना हिदायत से, तो वो वक्त के नबी से भी नहीं फायदा उठाएगा। तो लिहाजा बनी इसराइल पर ये बड़ी गहरी तनकीद है कि आज तो ये कहते हो कि ये नबी हमारी नस्ल से नहीं, तो कल क्या हुआ था जब नबी तुम्हारी अपनी नस्ल से आए? फिर जरा इस मीसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं इनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो। इसको हाईलाइट कर लें। अल्लाह ताला मुझसे और आपसे जो चाहता है ना, वो ये चाहता है कि इस किताब को कैसे पकड़े, खुजू मा अतैनाकुम बिकुव्वा, इस किताब को मजबूत हाथों से पकड़े। क्या मतलब है? छोटे छोटे उजर और छोटी छोटी मजबूरियां इस किताब को ना हटा दें। और वस्माऊ, और सुनो तो सही, सुनने से बात समझ आती है। तुम्हारे असलाफ ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं। ये किनका जुमला है? माजी के मुसलमानों का। सुनेंगे जरूर, अमल नहीं करेंगे। आज का मुसलमान क्या कहता है? सुनते ही नहीं है। वो सुन के अमल ना करने की बात करते थे, आज अब मुसलमान कहते हैं सुनो ही नहीं, सुनोगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। और इनकी बातिल परस्ती का यह हाल था कि दिलों में इनके बछड़ा ही बसा हुआ था। आइए मैं और आप अपने बछड़े भी तो ढूंढें। हर एक का बछड़ा फर्क है। बछड़ा के मजबूरियां, वो चीजें जो हमें अल्लाह के रास्तों से दूर करती हैं, और हम उसके बारे में बहुत ज्यादा पिकी हो जाते हैं। किसी को बहुत सोना अच्छा लगता है, नींद की वजह से बाज दफा नमाजें चली जाती हैं, कुरान चला जाता है। किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी की सुस्ती, किसी का वक्त जाया करना, किसी का शॉपिंग करना। तो यहां आप अपने लिए छोटा सा नुक्ता नोट करें कि आपने घर जाकर गौर व फिक्र करना है कि मेरा बछड़ा क्या है, और फिर उस बछड़े को इंशाल्लाह जिबा करना है। इस किताब के साथ हमने अपना ताल्लुक मजबूत करना है, तो छोटी छोटी चीजें रास्ते से हटाएंगे, तो आप देखिएगा कितना इस किताब से खैर का खजाना हमारी जिंदगी में आएगा। हमारी जिंदगी में कमी नहीं आएगी, बल्कि और ही ज्यादा खैर आएगी। कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। कैसी हरकतों का? कि सुन के मानेंगे नहीं। इनसे कहो, यहूद का एक दावा था, कहते थे कि जन्नत हमारे लिए बनी है और अल्लाह इज वेटिंग फॉर अस एंड वी आर चोजन पीपल, हम मरेंगे मरते ही जन्नत में जाएंगे। ये इस किस्म की खुशफहमियां थी। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा, इनसे कहो अगर वाकई अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो, अगर तुम अपने ख्याल में वाकई सच्चे हो। यकीन जानो कि ये कभी इसकी तमन्ना न करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों जो कुछ कमा कर उन्होंने भेजा, इसका तकाजा यही था कि ये वहां जाने की तमन्ना न करें। अल्लाह इन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है, तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे। हत्ता कि इस मामले में मुश्किलों से भी बड़े हुए हैं। क्या पता चला? कि जब आगे की तैयारी की होती है ना, तो मौत बुरी नहीं लगती। मौत का लफ्ज सुनकर डिप्रेशन में और गम में वही लोग चले जाते हैं जिनकी तैयारी नहीं है। इनमें से तो एक एक शख्स ये चाहता है कि किसी तरह हजार बरस जिए, हालांकि लंबी उम्र बहरहाल इसे अजाब से तो दूर नहीं फेंक सकती। जैसे कुछ अमाल ये कर रहे हैं, अल्लाह तो इनको देख ही रहा है।